الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیو اور پردہ نشین محترمہ میری مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اندر میں بیان فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم او انسان مرد اور عورتیں تم کو تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تم کو تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا یہ عجیب آیت ہے قرآن کریم کی جب ایک عورت کا یا ایک مرد کا لادلا بچہ روٹ جائے تو ماں اس کو ناز و انداز اور پیار کے ساتھ مناتی ہے کہ کیا ہوا بچہ تجھے کیوں رو گیا کیوں رو رہا ہے کیا بات ہے کیوں مجھ سے دور ہو گیا اللہ رب العزت کی رحمت پر بھی قربان جاؤں وہ غفلت میں پڑے ہوئے مرد اور عورتوں کو اسی انداز سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی عجیب ہے یا ایہا الانسان اے مرد اور عورت یا حرف ندا ہے جب کوئی دور ہوتا ہے تو اس کو بلایا جاتا ہے جب کوئی بندہ اور بندی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں جب کوئی بندہ اور بندی اللہ سے دور بھاگ جاتے ہیں تو اس کو بلایا جاتا ہے یا ایہا الانسان او میرے مسلمان مرد اور عورتیں او میرے نبی کی امتیں کیا ہو گیا تمہیں اللہ تو کہہ رہے ہیں مجھ سے دور کیوں چلے گئے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ پاک نے دوسری بات بیان فرمائی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو تمہارے سانس لینے کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے سانس انسان کے گلے میں تین رگیں ہیں ایک پانی کی ایک کھانے کی और उससे भी ज्यादा करीब सांस की है जो 24 घंटे चलती है। अगर सांस ही बन जाए अंदर का अंदर बाहर का बाहर तो इंसान मर जाता है, चाहे मर्द हो या औरत, चाहे बच्चा हो या जवान, खत्म हो जाता है। अल्लाह तो कह रहे नहनु अकरब, हम उस सांस से भी ज्यादा तुझसे करीब है। ज्यादा अकरब के मना बहुत ज्यादा करीब है। हम तो समझते हैं कि अपना गला और उसकी जो नसें हैं वो करीब है, नहीं, वो रगे से भी ज्यादा अल्लाह करीब है। तो अल्लाह तबारक व ताला कुरान में कहते हैं परवरदिगार तो रगे जान से भी ज्यादा करीब है। और हुरूफ़े निदा या अय्यूह और इंसान से पता चलता है कि बहुत दूर है। ये क्या मतलब? या का माना तो दूर के लिए होता है, या अय्यूह और इंसान, ओ मुझसे दूर भागने वाले मर्द औरत। और दूसरी आयत तो कह रही मैं तो तुम्हारी गले की रग से ज्यादा करीब है। क्या मतलब है इन दोनों आयत का? तो उलमाए किराम ने ये बात जब हम तफसीर में पढ़ते हैं ना तो समझ में आती है कि एक तरफ तो अल्लाह कह रहे हैं मैं तो तुझसे करीब हूं, तुम्हारी रग से भी ज्यादा करीब हूं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं तू तो मुझसे दूर भाग गया है। तो क्या मतलब है दोनों आयत का? तो उसका जवाब ये दिया कि इंसान इल्म के लिहाज से अल्लाह के करीब है लेकिन सिफात आमाल के लिहाज से अल्लाह से दूर है, अल्लाह से दूर है। इल्म के लिहाज से अल्लाह के करीब है, अल्लाह जानता है, अल्लाह को सब पता है, अल्लाह को सारा इल्म है तू क्या कर रहा है, लेकिन तेरी सिफात देख, तेरी सिफात के एतबार से तो मुझसे दूर हो गया। बुरे काम, गंदे काम, नमाज न पढ़ना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे न होना, गुनाह के काम करना, उसकी वजह से तो दूर हो गया। तो क्या फरमा? या अय्युहल इंसान, ये लफ्ज इंसान भी अजीब बात है। इंसान के भी तीन मतलब है। इंसान बयान किया जाता है उनुस से, उनुस, और उनुस के माना है भाई इस बंदे को मुझसे उन्स है, मोहब्बत है। उन्स के माना मोहब्बत, उस उन्स से इंसान बना है। या इंसान का लफ्ज निस्यान से है, निस्यान कहते हैं भूलने को। या इंसान का लफ्ज है आनस से, फलम्मा आनस मिन जानिबित तूरी नारा। तो आनस का मतलब है देखना तेरी दानी तरफ, माउंट ऑफ तूर की दानी तरफ देख ए मूसा। आनस जानिबित तूरा, माउंट ऑफ तूर की दानी तरफ देख। तो इंसान के तीन मीनिंग हो गए। अगर उन्स से है तो मोहब्बत के माने में, अगर निस्यान से है तो भूलने के माने में, और अगर आनस से है इंसान तो उसके माना देखने वाला। गोया इंसान के तीन मानी बन गए, मोहब्बत करने वाला, भूलने वाला, देखने वाला। हमारे उलमा फरमाते हैं, मशाइकीन फरमाते हैं तीनों मानी इंसान पर सादिक आते हैं। तीनों मानी इंसान, मर्द और औरत पर बोले जाते हैं। अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर अपने अनवार की, नूर की, तजल्ली की बारिश बरसाता है। जब ये उन नूर को देखता है तो सारी दुनिया को भूल जाता है। जब ये उस नूर को, नूर की बारिश को देखता है, आनस के माना देखना, जब ये तो बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करता है और मोहब्बत में नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जिक्रुल्लाह करते हैं, दुआएं करते हैं, तो अल्लाह का इतना नूर उसके दिल पर उतरता है। जब ये उन नूर को देखता है, नूर की बारिश होती है उसके ऊपर, जब ये उसको देखता है तो फिर पूरी दुनिया को भूल जाता है और अल्लाह के काम की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। और फिर आगे फरमाया बेरब्बी कल करीम गर्रका, तुझे धोखे में डाल दिया, बेरब्बे का तेरे रब से। रब किसको कहते हैं? रब उसको कहते हैं जो मां के पेट से कब्र के अंधेरे तक, कब्र में मरने तक जो अल्लाह परवरिश करे उसको रब कहते हैं। मां के पेट से जब से नुटफा रह गया वूम के अंदर में बच्चादानी में, तब से लेकर पूरे 9 महीने, फिर दुनिया में पैदा हुआ, फिर बचपना हुआ, फिर जवानी हुई, फिर अधे उम्र हुई, फिर बुढ़ापा हुआ, उसकी मौत आई, जितने साल की जिंदगी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल तक जब तक ये दुनिया में है, ये अल्लाह ताला उसको खिलाता है, पिलाता है, लुक आफ्टर करता है, सांस लेता है, सब कुछ होता है। इस करने वाले जात को रब कहते हैं। ये है या अय्युहल इंसान मा रब मा घर रखा, तुझे किसने धोखे में डाल दिया, डिसेप्शन में डाल दिया तेरे इतने बड़े रब से। अल्लाहु अकबर। जैसे अल्लाह पाक कहते हैं रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ जरूर अपने माँ बाप के लिए करनी चाहिए, चाहे जिंदा हो माँ बाप या चाहे दुनिया से चले गए हो, ये दुआ जरूर किया करो रोजाना, एक बार, दो बार, तीन बार बोलो रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये कुरान की आयत 15वें पारे में है। अगर तुम्हें अरबी नहीं आता, मुंह पे याद नहीं है, तो फिर यूं कह दिया करो ए मेरे रब्बा, मेरे दोनों माँ बाप पर रहम फरमा, जैसे मैं छोटा बच्चा था या बच्ची थी उन्होंने मुझ पर रहम किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही लफ्ज इस्तेमाल फरमाया वज़कुरनी इंड रब्बिक, तो रब का लफ्ज इस्तेमाल होता है माँ बाप के लिए भी, मखलूक के लिए भी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए भी। रब्बुस समावाति वल अर्द व रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तुम्हारा रब वो है जो जमीन का भी रब, मकान का भी रब, जमाने का भी रब, आसमानों का भी रब, तुम्हारे बाप दादाओं का भी रब, तुम्हारा भी रब वो है रब। रब का मतलब अजीब है, पालने वाला, इंसान की जरूरियात को पूरा करने वाला। आज दुनिया में लोगों ने अपने असबाब को, अपने जॉब को, अपनी फैक्ट्री को, अपनी दुकान को, अपनी जायदाद को, अपनी दुनिया को रब समझ लिया, धोखे में पड़ गया। किसी ने अपने दफ्तर को, किसी ने अपनी डिग्री को, किसी ने अपने कारोबार को और अल्लाह के हकाम को तोड़ दिया। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से निगाह हट कर मखलूक की तरफ चली जाए तो फिर इंसान अल्लाह को भूल जाता है। इसीलिए दुनिया की कामयाबी चाहिए। अल्लाह क्या कह रहे हैं, या अय्युहल इंसान, ओ इंसान, तुझको तेरे रब से किसने, करीब रब से, रब्बे करीब से किसने धोखे में डाल दिया है। कह रहे अल्लाह अनअम अल्लाह अलैहिम मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ये 4 किस्म के लोग अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए हैं जिन पर अल्लाह की नेमतें रात दिन उतरती है, दुनिया में भी उतरती थी और कब्र में भी और कयामत में भी। उसमें मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन, उनका ताल्लुक तो वही के साथ है, नबी अलैहिस्सलाम पर वही आती थी, सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक ने और सिद्दीकीन ने वही को फौरन मान लिया, गोया अंबिया और सिद्दीकीन में इल्म की निस्बत है। और शुहदा और सालिहीन में अमल की निस्बत है, अमल के कायनात की सआदतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म और अमल में रखी है। बात समझ में आ गई, इसलिए कि इल्म के बगैर तो न मुझे नमाज आएगी किस तरह पढ़नी है, न मुझे कुरान आएगा कैसे कुरान पढ़ना है, इल्म के बगैर न मुझे रोजे का पता है, न जकात का किसी चीज का, न वुजू का, न गुसल का, न जकात का किसी चीज का पता नहीं चलता है। तो इल्म की निस्बत हुई अबू नबी अंबिया अलैहिस्सलाम और सिद्दीकीन की तरफ, और अमल की निस्बत हुई शुहदा और सालिहीन की तरफ। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो फिर इल्म भी हासिल करो, और जो अमल करना है अल्लाह के नबी का बतलाया हुआ तरीका है उस पर भी चलो। दुनिया में हम पैदा हुए तो इल्म नहीं था, था कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके पास कोई इल्म नहीं है। कुरान करीब में इसी को बयान फरमाया है सूरतुन नज्म में, इज अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमून शैया, ला तालमून शैया, जब तुम अपनी मां के पेट में जनीन थे, जनीन का माना है बच्चा मां के पेट में, तो तुम्हारे पास जरा बराबर नॉलेज नहीं था। इज अंतुम अजिन्नतुन, इज अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनी उम्महातिकुम, सो मालूम होता है जब बच्चा पैदा होता है तो ये बिल्कुल अधीमुल इल्म होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, इल्म होता ही नहीं। फिर दुनिया में थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, 5 साल का 6 साल का, किताबें पढ़ी, जो कुछ भी पढ़ा वो तो महदूद है। अल्लाह पाक ने देखो कुरान में क्या कहा, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा उतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, दुनिया में मैंने तुमको जितना इल्म दिया है ये बिल्कुल जर्रा है, जर्रा कितना है जर्रा, उसकी तफसीर सूरह कहफ में है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, ये कश्ती पर जो छोटी सी चिड़िया बैठी है उसने अपने मुंह में अपनी बेक में जो एक कतरा पानी लिया, मेरा इलम मूसा तुम्हारा इलम तौरात का जबूर का इंजील का कुरान का दुनिया की मखलूक का इलम अल्लाह के इलम के मुकाबिल में ये बिल्कुल कतरे की तरह है, कतरे की तरह ये मिसाल है। इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं वमा उती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, गोया जवानी में कलील इलम मिला, बचपने में अदीमुल इलम बिल्कुल नहीं, और जवानी में कलीरुल इलम थोड़ी सी डिग्री हासिल की, थोड़ा सा आलिम बन गया, हाफिज बन गया, मुफ्ती बन गया, कारी बन गया, शेखुल हदीस बन गया, थोड़ा थोड़ा जरा सा इलम, वो भी कतरे से भी कम, राई के दाने से भी कम। जब बुढ़ापा आया ऐसी उम्र को पहुंच गया जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पना मांगी है कि अल्लाह ऐसी उम्र से मेरी हिफाजत फरमा जिसमें मैं सठिया जाऊं, सठिया का मतलब यह है न चल सकूं न फिर सकूं न बैठ सकूं, पेशाब भी बिस्तर में, टॉयलेट भी बिस्तर में, कुछ इलम नहीं, मैं अपने बच्चों को भूल जाऊं, अपनी बीवी का नाम भूल जाऊं, थोड़ी देर में पूछे कौन है, तू कौन है, तू कौन है, ऐसी जिंदगी से अल्लाह के नबी ने पना मांगी है, इसको कहते हैं सठिया जाने वाला वाली जिंदगी। कुरान में अल्लाह सूरतुन नहल की आयत नंबर 70 में अल्लाह बयान फरमाते हैं, लिकैला यालमा बाद इल्मिन शैआ, उसको कहते हैं जो इल्म था वो भी चला गया, भूल गया, अब तो दिमाग ही कमजोर हो गया, सब कुछ भूल गया। इसीलिए वो मुहद्दिसीन जो हदीस बयान करते थे पूरी जिंदगी, जब बुढ़ापा आ जाता है जब ये भूलने लगते हैं तो इसको हदीस में कहते हैं सैयुल हिफ्ज, इनका हिफ्ज कमजोर हो गया, उनकी मेमोरी ऑफ हदीस बिल्कुल कमजोर हो गई, तो ये हदीस ज़ईफ है, हदीस वीक हो गई उनकी मेमोरी की वजह से, उनकी जवानी की हदीस बिल्कुल सही लेकिन बुढ़ापे के भूल की वजह से उनके हदीस को ज़ईफ करार दे दिया जाता है। इतनी बड़ी चीज है ये, इसको कहते हैं अलीमुल इल्म। तो एक है अदीमुल इल्म, एक है कलीलुल इल्म और एक है अलीलुल इल्म, लिकैला यालम अलील, अलील के माना है जो इंसान में अदीम इलम, दरमियान में कलील इलम, आखिरी उम्र में अलील इलम, बीमारी की वजह से इलम भी चला गया। फिर अपने इलम पर क्या नाज करता है इंसान, क्या नाज करता है। अल्लाह अकबर। हबीब आजमी का नाम सुना होगा, बिल्कुल जाहिल थे। हबीब आजमी जो है ना, पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, जाहिल अनपढ़ थे। उसके सामने जब कुरान करीम की तिलावत की जाती थी, कुरान करीम पढ़ा जाता था, तो वो पहचान लेते थे। जब हदीस पाक बयान की जाती थी, पहचान लेते थे। किसी का कौल बयान किया जाता तो वो पहचान लेते थे। लोग हैरान हो गए, आप तो हाफिज नहीं, आलिम नहीं, हदीस नहीं पढ़ी, आपको कैसे पता चलता है कि ये कुरान की आयत है, ये हदीस है, ये फलां है, ये फिकार। फरमाया, जब मेरे सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती है तो एक नूर उसके मुंह से निकलता है, जिस नूर की वजह से मैं पहचान लेता हूँ ये मेरे मौला का कलाम है, मेरे अल्लाह का कलाम है। और जब हदीस पाक पढ़ी जाती है तो एक और दूसरी किस्म का नूर निकलता है, तो मैं समझ जाता हूँ ये मेरे नबी का फरमान है। और जब मखलूक के बारे में कोई बात की जाती है, अरबी में उनके सामने बात करते थे उस जमाने में, क्योंकि अरब, तो कहते मैं समझ जाता था कि ये दुनिया की बात है, उसमें कोई नूर नहीं है। इसलिए उलमा को इसी तरीके से अवाम को अपने इल्म पर, अपने दुनिया की डिग्रियों पर नाज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसलिए शरीयत ने हमें इस बात का हुक्म दिया कि हम हिदायत की बातों को तवज्जो से सुने। जहां कहीं मजलिस हो उसमें हिदायत की बातें होती है, एक तो तवज्जो से सुनना, नंबर दो अमल की नीयत से सुनना। दो चीज है कि मैं जो कुछ सुनूंगा उसको मैं सुनूंगा और उस पर अमल भी करूंगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते, वलौ अरादल्लाहु खैरन लअस्मअहुम, सूरह इनफाल की आयत नंबर 23 है, अगर अल्लाह उनके साथ खैर का इरादा करता तो उनको सुनने की तौफीक देता। अगर ये इस मजलिस में नहीं बैठते, सुनते नहीं, उठ उठ के चले जाते हैं, तो समझो अल्लाह ने उस बात के सुनने के लिए खैर का फैसला नहीं किया उसके लिए। वलव अराद अल्लाह, कुरान क्या आयत है, वलव अराद अल्लाह खैरा, अगर अल्लाह इरादा करता खैर का तो उनको सुनने की तौफीक देता। इसीलिए फिर जब सुनने के लिए बैठ जाए तो हमातन मुतवज्जे होकर बैठकर बातें सुने, इसलिए कि ये ना देखे कौन कहने वाला, ये देखो किसकी बात कही जाती है। कुरान में अल्लाह क्या कहते हैं, इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिकौमी यस्मऊन, और कुरान उसमें सुनने वालों के लिए नसीहत है। और कुरान में क्या फरमाया, फस्तमिउ लहू वअनसितू, अब जब कुरान और हदीस की बात सुनो, फिका की बात सुनो, तो सुनो और खामोश होकर सुनो, बातचीत न करो। ये अल्लाह ने कुरान में मजलिस के अदब बयान फरमाए हैं। और फिर फरमाया, इस्मऊ वअतीऊ, सुनो और उसके बाद अमल करो, इताअत करो। तीन बात बयान की, एक तो ये है कि सुनना अल्लाह की तरफ से तुमको बुलाया गया, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी तो तुम आ गए सुनने के लिए। तो अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसको सुनने की तौफीक देते हैं। कितनी माएं और बहनें दूर दूर से आए हुए हैं सुनने के लिए, ये अल्लाह की तरफ से खैर है। अगर अल्लाह ना चाहता तो कितने हैं जो बैठे रहते हैं। और फिर जब आ गए हैं तो सुनो, खामोशी से सुनो, बातचीत ना करो। और जब सुनो खामोशी से तो नियत करो, इस्मऊ वअतीऊ, वअतीऊ कि हम इताअत भी करेंगे। तो अच्छी तरह सुनना भी अच्छी खूबी है। वो ना एक आदमी सुने एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, ये भी होता है। इसीलिए कुरान करीम में उसका भी जवाब दिया है, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्ब। कुरान करीम और हदीस नसीहत है उनके लिए जिनके अंदर में दिल हो। क्या कह रहे अल्लाह ताला, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा, ये कुरान करीम में नसीहत, लिमन काना लहू क़ल्ब, जिसके अंदर में क्या हो गई, दिल हो। और जिनके अंदर में दिल नहीं, सिल है, पत्थर है, वो क्या सुनेगा। तो एक बात तो ये बयान की, जब मजलिस में आ जाओ तो सुनो गौर से, अमल की नियत से सुनो, और फिर दिल को हाजिर रखकर सुनो। वरना बहुत सारे होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, मजलिस में आ तो गए लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अल्लाह दूसरी जगह आगे क्या फरमाते हैं, लिमन कान लहू क़ल्ब, दिल होना चाहिए, नहीं दिल हाजिर हो, औ अलका समा, कान भी हाजिर हो। वरना यहां बैठे हैं और दिल तो कहीं और जगह है, दिमाग तो कहीं दुकान में घूम रहा है, कोई जॉब में घूम रहा है, औ अलका समा, आज क्या कुकिंग करनी उसमें घूम रहा है। समझ में बात आ रही, औ अलका समा, अल्लाह क्या कह रहे हैं, दिल भी हाजिर, कान भी हाजिर, और तीसरी बात वह हुआ शहीद, खुद भी हाजिर। तीन चीजें अल्लाह ने कुरान में बयान की है सूरह काफ में। इस तरीके की बात सुनेंगे कि दिल हाजिर, कान हाजिर, खुद हाजिर, तो अल्लाह उसके लिए हिदायत का नूर खोल देगा, क्योंकि कुरान करीम में बहुत नूर है। जब अल्लाह ने खैर का इरादा किया, बुलाया है, तीन चीजें करनी है, दिल हाजिर, दिमाग हाजिर, बदन हाजिर। दिल हाजिर, दिमाग हाजिर, बदन हाजिर, और अमल की नीयत से सुनेंगे। और ये बात याद रखो, हिदायत का नूर मिलेगा। जो आदमी कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हिदायत के रास्ते पर होता है। लेकिन उसके बाद उस हिदायत में तरक्की का रास्ता भी खुला हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ लिया, लेकिन हिदायत में तरक्की कैसे करेगा। इसलिए कि जन्नत में तरक्की करने के लिए दुनिया में तरक्की करनी पड़ेगी। एक तो दुनिया की लाइन से आदमी तरक्की करता है, ये स्कूल में पढ़ा, फिर आगे पढ़ा, फिर आगे पढ़ा, पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, एंड तक पहुंच गया, कोई डिग्री बाकी नहीं रखी, है ना, उसमें सही है ना। और एक आखिरत की तरफ, दुनिया में ऐसी तरक्की आखिरत के लिए, क्या कह रहे हैं, इन मजलिसों में आने का मकसद भी यही है कि हिदायत के नूर में और इजाफा हो जाए। जहां कुरान और हदीस की मजलिसें होती है, उनमें आने का मकसद क्या है, कि आदमी की हिदायत का नूर आगे बढ़े, आगे बढ़े। और कुरान करीम अजीम शान असहाबे कहफ के बारे में क्या कह रहा है, कुरान ने ही बयान फरमाया, इन्नहुम फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम, ये वो नौजवान थे, अपने रब पर उनका ईमान तो था, लेकिन वज़िदनाहुम हुदा, हमने उनकी हिदायत को और आगे बढ़ा दिया। कब बढ़ा, जब अपने घर को छोड़कर गए कहां पर, जंगल में जाकर अपने ईमान को बचाने के लिए, तो अल्लाह ने उनके हिदायत को और बढ़ा दिया। हम अपने ईमान को बचाने के लिए मदरसों में जाते हैं, ये भी तो एक एक समझो के गार है, जहां बैठकर मदरसे में बैठकर हम अल्लाह रसूल कुरान और हिदायत की बात को सुनते हैं, तो उससे भी क्या है, हिदायत बढ़ता जाता है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इंसान तरक्की कर जाता है। और इसी का नाम वली विलायत है। जब आदमी तरक्की करे हिदायत में, तो उसी का नाम विलायत है। अगर हम बेतवज्जुही से, दिल भी हाजिर नहीं, दिमाग भी हाजिर नहीं, खुद भी हाजिर नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। जैसे एक बच्चा मदरसे में आ गया, चलो एक मिसाल दे, उस्ताद जी ने पढ़ाया इस्लाम के पांच अरकान है, ईमान है, नमाज है, रोजा है, जकात है, हज है। जब घर पर पहुंचा तो बाप ने पूछा, बेटा आज क्या सीखा उस्ताद जी के पास। कहने लगा, उस्ताद जी ने ये पढ़ाया इस्लाम के पांच कान होते हैं, अरकान को कान बना दिया है,
अरकान है ना, अलिफ रा को निकाल कर उसने क्या कहा, इस्लाम के पांच कान है। इसीलिए अल्लामा शमसुद्दीन जहबी रहमतुल्लाह ने जो भी कुछ सुनते थे, फरमाते मैं जो भी कुछ सुनता हूं मुझे उसी वक्त याद हो जाता है। अल्लामा शमसुद्दीन जहबी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, फरमाया जब कभी मैं सुनता हूं मुझे फौरी तौर पर याद हो जाता है, और मैं अपने पास तलबा को यह बात क्लास में कहा करता हूं कि अल्लामा जहबी, जहब के माना गोल, मगर ये जहबी तुम लोग ऐसे हो क्लास में जो सुनते हो दूसरे दिन पूछो तो गायब, जहब या जहबू के माना गायब, भाग जाता पता भी नहीं कल उस्ताद ने कहां तक पढ़ाया। सो मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे शेख के शेख, हमारे शेख का नाम है हजरत मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह, शहीद हज, जो हज में मीना में शहीद हुए, मीना में दफन हुए, जिन्होंने फतावे महमूदिया लिखी, मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह, मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब हरमैन शरीफैन तजरीफ ले गए, तवाफ किया, मकाम इब्राहिम के पास नफल पड़ी, और नफल पढ़ के अल्लाह वालों की दुआ भी अजीब होती है, ये कभी कभी सुनना चाहिए ऐसी दुआएं। उन्होंने मकाम इब्राहिम पर दुआ मांगते हुए क्या कहा, ए अल्लाह सारी दुनिया मुझे मुफ्ती कहती है, सारी दुनिया क्या कहती है मुझे, मुफ्ती कहती है, अब तो आप मुझे मुफ्त में बख्श दीजिए, मुफ्त में आप मुझे क्या है, मुफ्त में बख्श दीजिए। मुफ्ती का लफ्ज तो फतवा से है, फतवा देने वाला, लेकिन वो उर्दू जुबान में क्या कहा, मुफ्त में बख्श दीजिए। तो इंसान बैठकर तवज्जो से सुने, अबू जहल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से मेराज का वाकया सुना, अल्लाह के नबी जब तशरीफ लाए मेराज से तो सुबह में लोगों के सामने बयान किया तो उसने कबूल ही नहीं किया। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने जब ये वापस जाने लगा मजाक करता वो हंसता हुआ तो रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक मिल गए, तो काफिर की जबान से सुना, नबी की जबान से नहीं। अबू जहल ने कहा सिद्दीक तुम्हें कुछ पता है कि एक आदमी एक रात में अक्सा चला गया, सात आसमान पर, जन्नत जहन्नम पर वापस भी आ गया, क्या तू उसको बिलीव करता है, कहा कौन कहता है, कहा तेरा दोस्त, क्या कहा तुम्हारा दोस्त कह रहा है, कि किसकी जबान से सुना मेराज का वाकया, नबी की जबान से नहीं काफिर की जबान से सुना, और कहा अगर मेरा नबी कहता है तो सच, कबूल कर लिया। इसलिए जितने भी यहां सुनने के लिए आते हैं जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है अगर आप सही नीयत से आओगे, हिदायत की नीयत से आओगे, सुनकर अमल की नीयत से आओगे। तो मेरे नबी का फरमान सच्चा है, मन कान फी तलब इल्मी कानतिल जन्नत फी तलब ही, मिश्कात शरीफ की हदीस है, जब कोई बंदा कुरान या हदीस को तलब करने के लिए जाता है तो फिर जन्नत उसको तलब कर रही है, जन्नत उसको तलाश कर रही है। नबी का फरमान तो मानते हो ना, मन काना फी तलब इल्मी कानतिल जन्नत फी तलब ही, जो अपने घर से इल्म हासिल करने के लिए निकला के चलो आज बुध का दीन है, हदीस का दर्स सुनेंगे, आज संडे का दीन है, कुरान की तफसीर सुनेंगे, हमारे पास औरतों के वक्त नहीं है, यही दो वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में पाबंदी से दर्स होता है 20 साल से, और पाबंदी से कुरान का दर्स होता है संडे को 20 साल से, चलो हम चलते हैं और मजलिस में जाकर बैठते हैं, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم نبی کی بات سچی ہوتی ہے، اللہ کے لیے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اب آسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، اسکول کے اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہوگا، ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے، یہاں تو نہیں پتا، چل یہاں بھی بس میں بتلاتے ہیں کارڈ، اسکول بس میں ٹکٹ ہوتی ہے شاید بتلا دیتے ہیں، جس کو اسٹوڈنٹ کارڈ کہتے ہیں۔ جب یہ بس پر سفر کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی کنسیشن مل جاتی ہے، رعایت مل جاتی ہے نا، بوڑھے لوگوں کو ملتی ہے بس میں رعایت، کنسیشن ملتی ہے نا، بعض مرتبہ فری میں ہوتی ہے، بعض مرتبہ سبھی نہیں ہوں، چلو فری میں سفر بھی فری۔ تو مدرسے کے اور اسکول کے اسٹوڈنٹ کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کنسیشن مل جاتی ہے۔ ایک مثال سمجھا رہا ہوں آسان، کہ جنت میں جانا کیسے آسان ہو جاتا ہے، ایک مثال ہے کہ آدمی جیسے اسٹوڈنٹ کو کنسیشن ملتی ہے۔ ہمارے ذاکر بھائی کو پتا ہے کہ ٹرین میں بھی کنسیشن مل جاتی ہے ماشاء اللہ، بسوں میں بھی مل جاتی ہے، سب جگہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح ان کو صرف شاید آدھا کرایہ، بعضوں کو تو بالکل دینا نہیں پڑتا بعضوں کو، لیکن اسکول والوں کو کیا ہے، آدھا کرایہ میں ان کو سفر کر جاتے ہیں، دور دور تک وہ اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں پھر واپس آتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سفر میں سہولت کا ہونا، سفر میں کیا ہو گیا، ایزی ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنے گھر میں کام کاج کو چھوڑ کر حدیث کے درس میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تفسیر کے درس میں آتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے بھی کنسیشن ہے۔ وہ میری بات سننے آ گئی ہے، بہت سیریس میٹر نہیں ہوگا، کنسیشن ہے، بہت اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب انسان پوری زندگی علم حاصل کرتا رہے، یہ تو 5 سال 6 سال 10 سال ہوگا، لیکن ہم پوری زندگی اس طریقے سے علم حاصل کرتے رہے، مجلس میں آتے رہے، اس کو کتنا کنسیشن ملے گا کہ جب بدھا ہو جائے گا اسی حالت میں تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یونس بھائی صحیح ہے نا، اسی میں بوڑھا ہو گیا تو سب معاف ہے، فری میں سب۔ اللہ کہہ رہا نا دنیا میں بہت سن سن کر آئے، جاؤ فری میں جنت میں، مفت میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اکابرین ایسی مثال بیان کرتے ہیں بھائی، بات کو سمجھنے کے لیے مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سو علم اور عمل میں چولی دامن کا ساتھ ہے، علم میں عمل نہیں، عمل نہیں علم نہیں، دونوں کام کے لیے، علم بھی ہو عمل بھی ہو۔ میں علم سے مراد شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، حافظ قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، مفتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اتنا علم ہو کہ جس سے انسان اپنی نماز، اپنا وضو، اپنا غسل، اپنی زکات، اپنا روزہ اور اپنے دین پر چل سکے، اتنا علم تو حاصل کرنا تو فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، عین ہے، فرض کفایہ بھی نہیں۔ اور دوسرے والا علم جو ہے مدرسے میں جا کر بیٹھنا، یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ علم اور عمل دونوں کیا ہیں، یہ کہہ رہے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے، کرتے کے بغیر چولی نہیں، چولی کے بغیر کرتا نہیں، سمجھ بات آ رہی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اپنے خطبات حکیم الاسلام میں ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں یہ جو اوپر کا حصہ ہے، ناف کے اوپر کا حصہ، یہ علماء کی بستی ہے۔ کیا کہا؟ یہ علماء کی بستی ہے، اس میں آنکھیں اور اس میں کان اور اس میں دماغ اور اس کے زبان بھی داخل ہے، یہ ہے علماء کی بستی، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ اعضاء علم ہے۔ یہ کیا ہے کہ آدمی کان سے، آنکھ سے، زبان سے، دماغ سے علم حاصل کرتا ہے، یہ اعضاء علم ہے، اور انہی اعضاء سے آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد نیچے کا دھر مزدوروں، کام والوں کی بستی ہے۔ یہاں تک تو چھاتی کے اوپر تک کیا ہے، کس کی ہے، علم کی بستی، علماء کی بستی، اور نیچے تک کس کی بستی ہے، مزدور کی بستی ہے۔ کیا مطلب اس میں، اس میں ہاتھ بھی آ گیا، پاؤں بھی آ گئے، پھیپھڑے بھی آ گئے، گردے بھی آ گئے، یہ اعضا مزدورے والے کام کرتے ہیں نا، مزدور جیسے کام کرتے ہیں نا، تو ہاتھ بھی کام کرتا ہے، پھیپھڑے بھی کام کرتے ہیں سانس کے، اور اس کا پیر بھی کام کرتا ہے سب کچھ, تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے, اب یہ گلے تک علماء کی بستی, نیچے ناف سے لے کر یعنی سب سے نیچے کیا ہے مزدور کی بستی, اب ان کے درمیان میں کیا ہے دل, اس کے درمیان میں ترتیب سے فرماتے دل, ان دونوں قسم کے اعضاء کا یہ دل, اوپر والے کا بھی حاکم بادشاہ, نیچے والے کا بھی حاکم, گویا دل بادشاہ ہے, علماء کی بستی کا بھی اور مزدوروں کی بستی کا بھی, گویا یہ اس کو سینٹر میں بنا دیا. وہ فرماتے جب کسی چیز کو ذبح کیا جاتا ہے تو گلی پر, گلے پر کیا چلتی ہے چھڑی چلتی ہے نا جانور کی, تو گلے پر چھڑی پھیرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے علم و عمل کا رشتہ کیا ہو گیا, نیچے والا عمل ہے اوپر والا علم ہے, ایسے یہاں سے ذبح کرے تو اوپر والا علم ختم اور نیچے والا عمل ختم, نیچے ہو گیا. یہاں سے معلوم ہوا جس بندے کے اندر میں علم اور عمل کا رشتہ ختم ہو جائے, علم ہے عمل نہیں ہے, یہ عمل ہے علم نہیں ہے, تو پھر وہ زندہ نہیں وہ مردہ ہے. قاری صاحب نے کتنی اچھی مثال سمجھائی ہے, تو زندہ انسان وہی شمار ہوگا جس کے اندر میں علم اور عمل دونوں ہو. تو میری مائیں اور بہنیں, آپ لوگ ہر ویرس دیکھو ماشاءاللہ پابندی سے آتی ہو, تو یہاں پر آ کر کیا کریں, بات کو سنیں, دل بھی حاضر رکھے, دماغ بھی حاضر رکھے, اپنی ذات کو بھی حاضر کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں آخری وصیت کرتے ہیں, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, فذکر بالقرآن, آپ ان کو وصیت کیجئے کہ قرآن کے ذریعے سے تاکہ اللہ کے وعدے سے کیا ہو جائیں در جائیں, در جائیں. تو قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے, اللہ کی مان کر, اللہ کی مان کر چلنا, اللہ کو اور رسول کو ماننا اور اللہ کی اور رسول کی مان کر چلنا اور کسی کی نہیں. تو یہ مجلس ہے اس میں یہی باتیں ہیں, شیطان تو چھوڑتا نہیں ہے, ونٹر ہو یا سمر ہمیں مسلیت کرتا رہتا ہے, پھر چلے جانا پھر چلے جانا پھر چلے جانا, لیکن ہر ہفتے الحمدللہ اللہ بھی مجھے, اللہ مجھے صحت اور عافیت نصیب فرمائے, علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے, آپ لوگوں کی دعائیں ہوگی, چلتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندگی ہوگی, ہم دین کی باتیں قرآن حدیث کی سناتے رہیں گے, ہمارے لیے بھی دعا کیجئے. اس لیے اس مجلس میں ضرور تشریف لائیے, اس سے ہمارا دل ہے ہمارا ایمان ہے اس کو بستر ملے گا, اور انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں جانا کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا دیان یا سلطان, یا قدیم الاحسان. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ, اے ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما, ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما, ہم سب کا سننا قبول فرما. اے اللہ, یہ مجلس ہمارے لیے ہدایت کا نور بنا دے. اے اللہ, یہ مجلس ہمارے لیے ہدایت کا نور بنا دے. اے اللہ, آنکھوں کا چشم و چراغ بنا دے, زبان کا نور بنا دے. الہ العالمین, نیک والے راستے پر چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرما, گندے راستے سے, گناہوں کے راستے سے, برائیوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں علم و عمل دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ, سالوں سے ہم سن رہے ہیں, اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ, ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے, ہدایت کے راستے کھول دے, ہدایت کی ترقی کے راستے کھول دے, ہدایت کی ترقی کے راستے کھول دے, جیسے تو نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کے لیے اللہ ہدایت کی ترقی کے راستے کھول دیے تھے, ہم بھی اللہ مسجد کوبا کے غار میں آ کر بیٹھے ہیں اور تیرا اور تیرے نبی کا فرمان سن رہے ہیں. ہمارے لیے بھی ہدایت کے راستے کھول دے, ہدایت کے راستے کھول دے, ہدایت کی ترقی کے راستے کھول دے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, جہاں جہاں لوگ مکسلر کے ذریعے ای مسجد کے ذریعے سنتے ہیں سب کی مغفرت فرما. اے اللہ آنے والیوں کی, آنے والے جتنے بھی ہیں اللہ یہاں پر, ان کے قدم قدم کو ہدایت کا ذریعہ بنا, رحمت کا ذریعہ بنا, مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بننے کا ذریعہ بنا. اے اللہ گھروں میں سکون کا ذریعہ بنا. اے اللہ تیرے نبی کے فرمان میں, تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو میری بات سننے کے لیے دور دور سے آئے, اے اللہ تیرے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے. اے اللہ ہمارے چہرے کو تر و تازہ فرما, دنیا میں بھی قبر میں بھی. اے اللہ مٹنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ڈسٹروئی ہونے سے ہماری حفاظت فرما, حدیث کی برکت سے دنیا میں بھی تر و تازگی نصیب فرما, ہمارے دلوں کو بھی فریش فرما, قبر میں بھی ہمیں فریشگی اور تر و تازگی نصیب فرمانا, تا قیامت جنت تک ہمیں تر و تازگی نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہو اس مجمع میں سب کے سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما, جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین سب کی مغفرت فرما. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما, آباد کرنے والوں کو آباد فرما, ان کی آل اولاد کو آباد فرما. یا اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق دے کہ اپنے نوجوانوں کو اور اپنے گھر والوں کو مسجد میں بھیجے ہر نماز کے لیے تاکہ مسجد آباد ہو. الہ العالمین یا اللہ ان کی ایسی ان کو توفیق عطا فرما. یا اللہ گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما, آپس میں محبت مبدت نصیب فرما. جن کی اولاد ماں باپ کے نافرمان ہے, ماں باپ سے دور ہے, گندے کاموں میں لگی ہوئی ہے, اللہ ان سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن, عالم قرآن, عاشق قرآن, دائی قرآن, ناشر قرآن, اے اللہ تو بنا دے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں, علماء ربانیین میں سے بنا. اور تا قیامت ہماری نسلوں میں الہ العالمین علماء ربانیین پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی وسلم.